सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
भगवान से नहीं, भगवान कहते हैं कि योग क्या चीज है। तो भगवान ने 18वें श्लोक में बताया, यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते निष्प्रिय सर्वकामेभ्य युक्त इत्युच्यते तदा। यदा विनियतम चित्तम, चित्तम मतलब माइंड, मन। जब आपका मन विनियतम, अच्छी तरह से नियमन किया हुआ मन, विनियतम कहाँ हो, ये चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते, ये मन जो है आपकी आत्मा में स्थित हो। मन जब आत्मा में स्थित हो, और कैसा मन होना चाहिए, निष्प्रिय सर्व कामेभ्य, उसमें किसी भी किस्म की कामना नहीं होनी चाहिए, निष्प्रिय कोई भी कामना नहीं होनी चाहिए। युक्त इत्युच्यते तदा, तब उसको हम कहेंगे युक्त हो गया है, युक्त हो गया। मन में जब कोई भी कामना नहीं है, और वो मन जो है अब विषयों में नहीं है, मन जब आत्मा में लग गया, तो उसको हम कहेंगे कि ये युक्त हो गया, ये मन जुड़ गया भगवान के साथ में। इस योग का नाम क्या भगवान ने रखा है, तो कहा तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, योग संगीतम इसका नाम भगवान कहते हैं। इसका नाम ये हुआ दुख संयोग का वियोग, दुख का जो संयोग होता है उसे भी योग हो जाएगा। जैसे ही आप इस योग के अंदर में प्रतिष्ठित होंगे, स्थित होंगे, तो क्या होगा, तो हम जो है अनात्मा से आत्मा में आ गए, क्योंकि मन कहाँ है, मन आत्मा में है, मन आत्मा में है। अच्छा, दुख कहाँ से आता है, अनात्मा से आता है। अगर अनात्मा से मन हटकर आत्मा में लग गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, दुख का संयोग जो अनात्म के साथ में था, अब आत्मा में चले जाने के कारण वो वियोग हो गया, वियोग हो गया। अब उसमें वहां पर दुख नहीं रहा, अब केवल आनंद ही आनंद है। भगवान कहते हैं स निश्चय न योग शब्द, इसको निश्चित रूप से करना चाहिए, इसको अवश्य करना चाहिए, इस योग को। योगम अनिर्विन्न चेतसा, ये चित्त कैसा होना चाहिए, मन कैसा होना चाहिए, उद्वेग रहित मन होना चाहिए, उद्वेग रहित मन से ऐसा योग करना चाहिए। ऐसे योग करने से क्या होगा, दुख का संयोग और नहीं होगा। दुख का संयोग नहीं होगा मतलब आप दुखी नहीं होंगे, आप दुखी नहीं होंगे तो क्या होगा, क्योंकि आप आत्मा में प्रतिष्ठित हो गए हैं, स्थित हो गए हैं, इसलिए क्या होगा, अब सुख ही सुख मिलेगा आपको। कैसे करना चाहिए, तो भगवान कहते हैं संकल्प प्रवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः, जितने भी संकल्प से उदित कामनाएं होती हैं, कामना का प्री स्टेज क्या है, पहला चरण क्या है, पहला चरण है संकल्प। मन में एक संकल्प आता है, तो संकल्प के द्वारा जो कामना आती हैं उसको क्या कहते हैं, त्यक्त्वा, त्यक्त्वा उसको छोड़ो। कितनी कामनाओं को छोड़ें, सर्वान सारी कामनाओं को छोड़ो, है कैसा अशेषतः, लेस मात्र भी नहीं रहे, थोड़ा भी नहीं रहना चाहिए कामना। जैसे ही थोड़ी सी कामना रहेगी विषय की, आप फिर संसार में आ जाओगे, बस हो गया, मनसा एव इंद्रिय ग्रामम विनियम में समन्तत है, मन और इंद्रिय ग्रामम, इंद्रिय ग्रामम मतलब पांच ज्ञान इंद्रिय, पांच कर्म इंद्रिया, ये हो गया इंद्रिय ग्राम, समस्त इंद्रिया, मन और इंद्रियों को विनियम में, विनियम मतलब नियमन करके, कंट्रोल करके, समन्तत है, समन्तत सर्व तरफ से, सारी इंद्रियों को और मन को जो है सारे विषयों से उसको हटा के कैसे करें, हटात नहीं करो, सहसा नहीं करो, इमीडिएटली नहीं करो, धीरे 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 करो, सनई सनई उपरमेत, उपरत उपरति। अच्छा कैसी उपरति होनी चाहिए, बुद्धिया धृति गृहता, धैर्य से युक्त बुद्धि होनी चाहिए। इसको हम उपरम करेंगे तो वो कैसी बुद्धि से उपरम करेंगे, धैर्य युक्त बुद्धि से हम उपरम करेंगे। अच्छा आत्मसंस्थानम मन कृत्वा, और मन को कहाँ लगाना है, मन को आत्मा में करना है, आत्मसंस्थानम मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत, उसके बाद में और चिंता मत करो, उसके बाद में अगर आपने चिंतन शुरू कर दिया फिर कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे, आप आत्मा में थे, आत्मा से अब अनात्मा में आ गए, आत्मा से फिर अनात्मा में आ जाएंगे। मगर मन का तो स्वभाव है, हैं? मन का स्वभाव है, बाहर जाने का उसका स्वभाव है, ये आदत अभी से नहीं पड़ी है, ये अनेक जन्मों की, अनेक वर्षों की आदत है। यतो यतो निश्चरति, मन बाहर जाएगा, आप नहीं भी चाहते हो तब भी हटा तो याद आ जाएगा, अरे आज तो कॉफी नहीं पिया, अरे यतो यतो निश्चरति, जब जब बाहर जाए, ये मन चंचलम अस्थिरम, ये चंचल मन है, इसकी ये हैबिट हो गई है, इसकी ये आदत पड़ गई है बाहर जाने की, ये चंचल है, अस्थिर है, इसको बाहर जाना है। ततः ततः नियमत एतद आत्मनि एव वशम नियेत, ततः ततः उतनी बार, अब कितनी बार, बोले अगर 100,000 बार बाहर जाए तो 100,000 बार उसको पकड़ के लाओ, जितनी बार बाहर जाए उतनी बार उसको पकड़ के नियम में, नियम में कैसे नियम करें, वैराग्य भाव होना चाहिए, वैराग्य भाव क्यों, आपको समझना होगा कि अनात्मा में कभी भी सुख नहीं है, ये वैराग्य भाव है, ये अगर आप विवेक कर लो कि अनात्मा में सुख नहीं है इसलिए मन तुम क्यों अनात्मा में जाते हो, और अनात्मा में जाने से तुमको कभी भी जो है पूर्ण सुख नहीं मिला, कृतकृत्यता नहीं आई, हम कभी ये नहीं कह पाए कि बस और सुख नहीं चाहिए, ऐसा नहीं हम कह पाए आज तक, इसलिए आत्मनि ये वशम नहीं, बार बार उसको ले आओ, यहां पर वापस लाओ, बार बार आत्मा में लेके आओ। कैसा मन चाहिए उसको लाने के लिए, बोलते हैं प्रशांत मनसम, प्रशांत होना चाहिए, प्रशांत कैसे होगा, शांत रजसम, दूसरी लाइन के अंदर देखिए 27वें श्लोक में, शांत रजसम, जब रजोगुण शांत हो जाएगा तब सत्वगुण की वृद्धि होती है। प्रशांत मनसम येनम योगिन सुखम उत्तम उपैति, ऐसा योगी जिसने अपने मन को शांत कर लिया, रजोगुण को शांत कर लिया और उसका मन अब एकदम प्रशांत है, प्रशांत है, तो ये क्या करेगा, योगिन ऐसा योगी सुख उत्तमम उपैति, वो उसको उत्तम सुख मिलेगा, उत्तम, उससे ऊपर का और कोई सुख नहीं है। आप लोगों को मालूम है कि दुनिया से हमको अनात्म वस्तुओं से प्रिय मोद, मोद एंड प्रमोद, ये तीन किस्म के डिग्री के हमको सुख मिलते हैं, प्रिय मोद एंड प्रमोद, मगर वो कैसा सुख है, सुखम उत्तमम, उससे बढ़ के उत्तम, उससे ऊपर कोई सुख ही नहीं है। अच्छा तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, ब्रह्म भूतम, इसको जीवन मुक्त कहेंगे, जीवन मुक्त कहेंगे, अकल्मसम, और उसको वो पाप रहित हो गया, वासना रहित हो गया, ज्ञान रहित हो गया, अकल्मसम। अच्छा उसके बाद वह कहते हैं युंजन एवं, युंजन एवं, जैसा मैंने आपको अभी तक बताया कैसे जुड़ना है, कैसे आत्मा में स्थित होना है, इस तरीके से सदात्मनम योगी विगत कल्मस, आत्मा को ऐसा योगी अपने मन को, कैसा मन है, विगत कल्मस है, जिसके अंदर कोई कल्मस नहीं है, कहाँ लगाता है, सदा आत्मनम, आत्मा में लगाए रखता है, और उसको क्या मिलता है, सुखेन ब्रह्म सर्वसम, ऐसे योगी को ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, ब्रह्म संस्परम अत्यंतम सुखम उष्णते, अत्यंतम मतलब इनफाइनाइट, अत्यंत मीन्स इनफाइनाइट सुख उसको मिलता है। ऐसा सुख कभी हमको आज तक मिला है? नहीं, हमको नहीं मिला आज तक। आज तक हमें जो है फाइनाइट सुख मिला है, जितने भी सुख मिले हैं चले जाते हैं, कुछ देर रहते हैं फिर चले जाते हैं। यहां कहते हैं आपको अत्यंतम, अत्यंतम मतलब अनंत सुख आपको मिलेगा। अच्छा, तो भगवान आप तो योग के द्वारा ही बताते हो। अच्छा, क्या ये महावाक्य से भी मिलेगा क्या? महावाक्य आप जानते हो, एक महावाक्य तत्वमसी, महावाक्य सुना आपने, तत्वमसी। मीन्स भगवान, तम मीन्स जीव, ओ जीव तुम भगवान हो, तत्वमसी। तो शंकराचार्य जी कहते हैं, अब योग का फल जो कि समस्त संसार को विच्छेद करा देने वाला, ब्रह्म के साथ एकता का दिखाने वाला है, वो दिखलाया जा रहा है। सारे संसार के विच्छेद वहां से हटा के आपको ब्रह्म के साथ में जोड़ दिया, तो वो फल अब दिखाने जा रहे हैं। तो वो फल कहाँ लिखा हुआ है? महावाक्य में लिखा हुआ है, तत्त्वमसि। तत्त्वमसि, तत् मीन्स भगवान, त्वम मीन्स जीव, जीव ही भगवान है, ये जीव तुम भगवान हो, तत्त्वमसि। अच्छा, तो देखो 29, 30 और 31 नंबर श्लोक है वो तत्त्वमसि महावाक्य के ऊपर में आधारित है। 29वें श्लोक में त्वम पद को लिया गया है। त्वम पद मतलब जो जीव है, जो योगी है, जो योगी है, जो सिद्ध हो गया है, उसकी दृष्टि कैसी है, ये 29वें श्लोक में है। 30वें श्लोक में भगवान बताएंगे कि तत्पद, तत्पद मतलब ईश्वर, ईश्वर का विजन क्या है, ईश्वर की दृष्टि क्या है। और 31वें श्लोक में एक के पद, एक के पद मतलब दोनों को एक बता दिया, एक बता दिया। देखो भगवद गीता में भी तत्वमसी है। अब एक एक करके हम देखते हैं किस श्लोक में क्या है, और जरा ध्यान से सुनिएगा इसको। 29वां श्लोक,
सर्वभूतस्थ आत्मानम् सर्वभूतानि चात्मनि, सर्वभूतानि चात्मनि, ईक्षते योगयुक्तात्मा, ईक्षते योगयुक्तात्मा, सर्वत्र समदर्शनः, सर्वत्र समदर्शनः, सर्वभूतस्थमात्मानम्, सर्वभूतानि चात्मनि, ईक्षते योगयुक्तात्मा, सर्वत्र समदर्शनः,
सर्वत्र समदर्शनः, सर्वत्र समदर्शनः। योगी जो अपने योग में सफल हो गया, योगी जो अपने योग में सफल हो गया, जैसे भगवान ने बताया उस तरीके से उसने ध्यान लगाया, ध्यान लगाने के बाद में ध्यान में सफल हो गया, तब उसकी अब दृष्टि कैसी हो गई, वह समदर्शी हो गया, समदर्शी हो गया है। अच्छा, योग युक्त आत्मा, यहां आत्मा माने मन, जिसका मन योग में समाहित हो गया, योग युक्त आत्मा, जिसका मन योग में समाहित हो गया, यानी समाहित अंतःकरण, ऐसा योग युक्त आत्मा समदर्शी है, सर्वत्र एकत्व देखता है, सब जगह उसको एक ही चीज नजर आती है, सब जगह एक चीज नजर। किसकी बात कर रहे हैं हम? हम उस जीव की बात कर रहे हैं जो योगी हो गया, जो अपने मन को आत्मा में लगाने में सफल हो गया। ऐसे व्यक्ति का दर्शन क्या है? वो सब जगह एकत्व देखता है। कैसे एकत्व देखता है? योग युक्त आत्मा आत्मानम सर्वभूतस्थम इच्छते। देखो साधारणतः हम लोग क्या कहते हैं, आप हो, मैं हूं, हम दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, और हम अपने आप को जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था में सीमित पाते हैं, सीमित पाते हैं, हम लिमिटेड हैं, लिमिटेड हैं। आत्मबोध में भी कहा गया, परिच्छिन्न एव अज्ञानात् तन्नाशेषति केवलः, जब तक हमारे पास में अज्ञान है तब तक हम अपने आप को सीमित मानते हैं। आप कौन हो? मैं जे कैनार हूं। कितने हो? अरे भाई यही बैठे हैं चेयर में, यही हैं, इतना और क्या है? अज्ञान। जैसे ही अज्ञान चला गया तब क्या होगा? तन नाशे सति केवल, अब केवल सत्य है और कुछ नहीं है, आत्मा ही आत्मा है, ब्रह्मन है और कुछ नहीं है। तन नाशे सति केवल, तो योग युक्त आत्मा अपने में एवं दूसरे में अपने आप को देखता है, अथवा उसका देहाभिमान खत्म हो गया। देह है मगर देह के साथ में तादात्म, देह के साथ में जो अभिमान है वो खत्म हो गया है। अब वो अपने आप में सबको देखता है, सब में देखता है, मतलब अधिष्ठानतया इच्छते। अब उसकी आत्मा, वो कहता है हमारी आत्मा भाई वो सब कुछ है, मेरी आत्मा जो है उसी में सब कुछ है। सर्वभूतानि च आत्मनि, देखो ये सेंटेंस जो है सर्वभूतानि च आत्मनि, ये आपका कैवल्य उपनिषद में भी आया है। आपने नाम सुना है कैवल्य उपनिषद का? आपने पढ़ा है? हमने यहाँ पढ़ाया था कैवल्य उपनिषद, ठीक है। सारे भूत मेरे में अध्यस्त हैं। अब उसकी विजन क्या है, दृष्टि क्या है? सारे भूत मेरे में अध्यस्त हैं। जैसे हम जानते हैं ना कि ब्रह्मन के ऊपर में सारा जगत सुपर इम्पोज्ड है। सबस्ट्रेटम कौन है? ब्रह्म है। ये ब्रह्म जब लिमिटेड बाय इस बॉडी हो जाता है तो उसको हम आत्मा कहते हैं। वही ब्रह्म आत्मा बन जाता है जब वो कंडीशन बाय बॉडी हो जाता है, शरीर मन बुद्धि से अगर वो सीमित हो गया तो उसको हम आत्मा कहते हैं। अब वो कहता है कि हमारी आत्मा में ही सब भूत हैं, सब अध्यस्त हैं, सब कुछ आत्मा पर ही है। देखो ये श्लोक जो है ना त्वम पद को इंडिकेट कर रहा है। आपको आया समझ में त्वम पद क्यों कहा हमने? क्योंकि इस योगी की एक इंडिविजुअल की एक व्यक्ति की बात हो रही है, त्वम जो है एक की बात कर रहे हैं। अच्छा इसके बाद में हम बराबर कहते हैं ना ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य मतलब ब्रह्म अधिष्ठान है, जगत मिथ्या क्यों है? वो सुपर इम्पोज्ड है, सुपर इम्पोज्ड है। और इस योगी को अब क्या होता है? सर्वत्र समदर्शन होता है, सब जगह केवल वो आत्मा ही देखता है, सब जगह आत्मा देख रहा है, और उस आत्मा के अंदर सब भूतों को देखता है और अपनी आत्मा को हर भूतों में देखता है, हर बीइंग्स में देखता है, हर प्राणी में अपनी आत्मा देखता है। अब उसको ये पता लग गया कि मेरी जो आत्मा है वो दूसरे प्राणी की आत्मा एक है, उसकी आत्मा और मेरी आत्मा में कोई फर्क नहीं है। अच्छा इस श्लोक में योगी अपने को सब में और सबको अपने में देखता है। देखो ये विजन आता है, फिर ये दृष्टि बनती है। अगर आप निर्विकल समाधि के अंदर में सफलता प्राप्त कर ली, करने के बाद में आपको पता लगेगा कि मेरी जो आत्मा है वही आत्मा सबकी है और मेरी आत्मा में ही सब स्थित है और मेरी ही आत्मा सब में है, ऐसा जो है आपको भाव आएगा। अब यही बात जो है भगवान कहने जा रहे हैं। देखो ये तो योगी का व्यू था, योगी का विजन था, भगवान भी इसी बात को कहने जा रहे हैं। तो वो तत्पद हो गया, 29वां श्लोक त्वम पद था, क्योंकि योगी के विजन के अंदर उसकी आत्मा में सब कोई अध्यस्त हैं और उसकी आत्मा सब प्राणी में है। ठीक यही चीज अब भगवान अपनी तरफ से बोल रहे हैं। देखो हम अभी तक जो है समझ रहे थे कि भगवान का व्यू दूसरा है, मेरा व्यू दूसरा है योगी का, अब भगवान का व्यू क्या है ये सुनिए।
यो माम पश्यति सर्वत्र,
यो माम पश्यति सर्वत्र,
सर्वं च मयि पश्यति,
सर्वं च मयि पश्यति,
तस्याहं न प्रणश्यामि, तस्याहं न प्रणश्यामि, स च मे न प्रणश्यति,
स च मे न प्रणश्यति।
यो माम पश्यति सर्वत्र, सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि, स च मे न प्रणश्यति।
अब देखो भगवान की तरफ से बताने जा रहे हैं। तो 29वां श्लोक त्वम पद था योगी की दृष्टि से। योगी की दृष्टि कैसी बनती है? जब उसको साक्षात्कार हो जाता है, अपरोक्ष अनुभूति हो जाती है, तो उसने अपना दृष्टि बताई। अब भगवान कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र, यह मतलब योगी जिसे साक्षात्कार हुआ वो भगवान को सर्वत्र अधिष्ठानतया रूप दिखता है, वो अधिष्ठानतया दिखता है, उसको मालूम हो गया कि भगवान ही है सब जगह और कोई नहीं है। माम का मतलब क्या हुआ? माम का मतलब हुआ वासुदेव, भगवान कृष्ण। ये भगवान कृष्ण कौन है? ये ईश्वर हैं। देखो तत्पद किसको कहता है? ईश्वर को बताता है, रक्षित करता है। ये ईश्वर कौन है? ये महावाक्य का तत्पद है, महावाक्य का तत्पद है। और तत् का लक्षार्थ क्या है? तत्पद का लक्षार्थ है कि चेतन रूप से, चेतन रूप से। तो यो माम पश्यति सर्वत्र, माम मतलब वासुदेव। आगे योगी अपने आप में देख रहा था, अब वो कह रहे हैं, भगवान कहते हैं कि जो योगी मेरे को देखता है सब जगह, देखो मेरे को देखता है सर्वत्र, जो मुझे वासुदेव रूप से, ईश्वर रूप से, तत्पद या चित रूप से सब जगह देखता है। जहां पर चित आएगा वहां पर सत भी आएगा, वहां आनंद भी आएगा। तो जहां चित है वहां सत भी है, वहां आनंद भी है। अब ये क्या दिखाई पड़ता है? अब हम कहते हैं ना कि भगवान सब जगह हैं, भगवान सब जगह हैं। अरे भगवान सब जगह कहाँ हैं, कैसे हैं? तो हम लोग ये बताते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ एग्जिस्टेंस, सत जो है, इजनेस जो है, ये सब जगह है, सब जगह है। इनर्ट हो या सेंसियंट चीज हो, जड़ चीज हो या चेतन चीज हो, इजनेस जो है ये सब जगह है, एग्जिस्टेंस सब जगह है। हम लोगों ने दीर्घ दृष्टि विवेक में देखा, आपने भी कई बार सुना होगा, अस्थिभाति प्रियम रूपम नाम चेतंस पंचकम आद्य त्रय ब्रह्म रूपम जगत रूपम ततोद्वयम। प्रत्येक चीज के अंदर पांच चीजें हैं, बहुत बार आपने सुना है। अस्थिभाति प्रिय, अस्थिभाति प्रिय में सच्चिदानंद, सच्चित आनंद, अस्थिभाति प्रिय। और नाम रूप, नाम रूप सबका एक रूप है, उसका एक नाम हमने दे दिया ताकि हम उसके साथ व्यवहार कर सके, लोगों को पता लगे कि अरे ये टेबल है, ये किताब है। तो एक उसका हमने रूप देखा, उसका नाम दे दिया। तो हर चीज के अंदर, टेबल के अंदर भी नाम रूप है, अस्थिभांति प्रिय भी है। यहां जो जड़ में भी अस्थिभांति प्रिय है और चेतन वस्तु में भी अस्थिभांति प्रिय है, सब जगह है। तब ऐसा योगी क्या करता है? अस्थिभांति प्रिय को देखता है और नाम रूप को बाधित कर दिया उसने। हमें क्या दिखाई पड़ता है? जब तक हमको पूरा ज्ञान नहीं होगा तब तक हमको केवल नाम रूप नजर आएगा, तब तक नाम रूप नजर आएगा। अब जैसे टेबल के अंदर इजनेस है कि नहीं, मगर वो नजर नहीं आता है, वो नजर नहीं आता है। अगर इजनेस है तो वहां चित भी है, वहां आनंद भी है, साथ साथ है। जड़ में चित्त का प्रकाश नहीं होता, चेतन में चित्त का प्रकाश होता है। अच्छा, अब नाम रूप सच्चिदानंद को ढक नहीं सकता। अब ऐसे योगी की दृष्टि में अब उसको नाम रूप ढक नहीं सकता। अब वो ऐसा नहीं कहेगा कि हिरण्य मात्र पात्रे न सत्यम सत्यस्य अपिहित मुखम। अब जैसे ईशावास्य उपनिषद के अंदर भक्त ने कहा कि हे सूर्य, तुम अपना जो है ये हिरण्यमय पात्र, ये ब्रिलियंट डिस्क जो है, इसको हटाओ, मैं इसके पीछे सत्य को देखना चाहता हूं। अब उसको हटाने की दरकार नहीं है। अज्ञानी कहेगा कि भाई हाँ, सूर्य के अंदर भगवान बैठे हैं, सूर्य भगवान, तो दिखाई नहीं पड़ते हैं। क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं? कि सूर्य ने उसको ढक के रखा हुआ है, लगता है कोई गोल्डन डिस्क जो है सामने आ गई है। तो भक्त कहता है हटाओ, इसको हटाओ तो मैं देखना चाहता हूं। मगर ज्ञानी, ज्ञानी कहता है हमको हटाने की दरकार नहीं है, हमको मालूम है वहां है। क्यों है? बोले नाम रूप बाधित कर दिया। जिस सूर्य को आप ऐसे गोल आकार को जो ताप देता है, जो हमको लाइट देता है, उसका हमने नाम रूप हटा दिया। अब नाम रूप हटा दिया तो क्या मिला वहां? अस्थिभांति प्रिय है। देखो अस्थिभांति प्रिय उसको मिल गया, तो उसको जो है वो गोल्डन डिस्क नहीं हटानी है। ऐसा योगी जो है सत्य का दर्शन करता है। उसके बाद भगवान कहते हैं सर्वम च मई पश्यति, सबको मुझ में अधिष्ठान में देखता है, सबको देखता है। अच्छा, सब कुछ अधिष्ठान पर आरोपित है, हम अब बराबर ऐसा कहते हैं। हमारा शरीर भी किसके ऊपर आरोपित है? आत्मा के ऊपर आरोपित है। बाहर सारा जगत किसके ऊपर आरोपित है? ब्रह्मन के ऊपर आरोपित है सारा का सारा जगत। बाद में भगवान ये भी कहेंगे अहम आत्मा गुणा केसर सर्वभूताशस्त, भगवान कहने वाले हैं आगे जाके कि मैं सब प्राणियों में आत्मा के रूप में बैठा हुआ हूं। ऐसा नहीं समझो कि मैं आपके साथ नहीं हूं, मैं बाहर भी हूं और भीतर भी हूं। और उसके बाद नहीं और भी बता देंगे, कहेंगे क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्र सुभारत। अरे जितने भी जीव है तुम, आप कहते हो मैं जानता हूं मैं जानता हूं, अरे मैं असली में मैं जानने वाला हूं। अल्टीमेट सियर कौन है? बोला आत्मा सियर है। ये आंख नहीं देख सकती, जब आत्मा का प्रकाश यहां से चला जाता है, जब रिफ्लेक्शन निकल जाता है, जब सूक्ष्म शरीर निकल जाता है, तो आत्मा ये जो आंख जो है वो खुली रह जाती है, अब उसको कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। तो किसके कारण आत्मा ये देख पा रहा है, आंख कैसे देख पा रही है? तो केन उपनिषद ने कहा वो आंख का आंख है, इस आंख के पीछे वो बैठा हुआ है, वो कान का कान है, ऐसा वहां बताया है, वो मन का मन है। अच्छा, तस्याम न प्रणश्यामी सच मैंने प्रणश्यति, उसके लिए मैं कभी मरता नहीं और न वो मेरे लिए कभी मरता है। ये मरने मारने वाली क्या बात भगवान कह रहे हो? शंकराचार्य जी कहते हैं प्रणश्यति मतलब अदृश्य नहीं होता। तो ऐसे योगी के लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता, भगवान कहते हैं ऐसा योगी मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। देखो दोनों तो एक हो गए ना, दोनों एक हो गए, इसलिए न भगवान उसके लिए अदृश्य होते हैं और न ही योगी उनके लिए अदृश्य होता है या प्रत्यक्ष होता है। अच्छा, अब एक के पद, तो तत्त्वम असि, तो 29वें श्लोक में हमने त्वम पद देखा, उसी चीज को भगवान अपनी तरफ से जब बताते हैं ईश्वर की दृष्टि से तो उसको हम तत्पद कहते हैं। अब तत्त्वम एक ही चीज है, वो अब यहां बताने जा रहे हैं 31वें श्लोक में।
सर्वभूतस्थितं यो माम, सर्वभूतस्थितं यो माम भजन्ते कत्वमास्थितः, भजन्ते कत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि, सर्वथा वर्तमानोऽपि सयोगी मयि वर्तते, सयोगी मयि वर्तते सर्वभूतस्थितं यो मां भजन्ते कत्वमास्थितः, सर्वथा वर्तमानोऽपि सयोगी मयि वर्तते
सर्वभूतस्थितं य माम। देखो 29वें श्लोक में आपको मिला सर्वभूतस्थ आत्मानम, देखो आत्मानम, यहां पर सर्वभूतस्थितं य माम, देखो माम मतलब भगवान ईश्वर, तो वहां माने था त्वम पद और इस श्लोक में ईश्वर की बात हो रही है जो कि सब भूतों का अधिष्ठान स्थित है, मेरे को सब में देखो और मैं सब प्राणियों में हूं, ऐसा जो देखता है। भजती एकत्वम अस्थिता, भजती देखो एक मतलब भजती का पूजा होता है, यहां भजती का मतलब प्रेम, भजती का मतलब यहां प्रेम होगा। अच्छा, वह सब प्राणियों से प्रेम करता है, सब प्राणियों से प्रेम करता है क्योंकि अब उसको एक ही चीज नजर आती है। ईशावासी उपनिषद में कहा कि न बिजुगुप्त से, फिर उसको जो है उससे घृणा नहीं होती, किसी से घृणा नहीं होती है। अभी आप अगर केचुआ वगैरह देख लो या कोई इंसेक्ट देख लो आपको घृणा होती है, क्या है ये, मगर जैसे ही आपको ये पता लग जाएगा अरे इसके अंदर भी वही आत्मा है, भगवान ने इसको ये शरीर दिया इसके लिए दूसरा काम है, वो अपना काम कर रहा है मेरा काम दूसरा है, मगर हम दोनों की आत्मा एक है, तब उससे घृणा नहीं होगी। शरीर से घृणा हो सकती है, इससे घृणा हो सकती है, मगर उससे घृणा नहीं होगी। एकत्वम, एकत्वम देखो किसको कहता है, एकत्वम देखो ज्ञान से प्राप्त होता है एकत्वम, एकत्वम ज्ञान से प्राप्त होता है कि हम दोनों एक हैं, हमारे और ईश्वर में या हमारे और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, ये ज्ञान से प्राप्त हुआ। और भजति का मतलब भक्ति, प्रेम माने क्या, भक्ति, भक्ति क्या है, परम प्रेम स्वरूपा, हमने नारद भक्ति सूत्र में देखा परम प्रेम स्वरूपा, तो यहां भजति मतलब प्रेम भक्ति, इसलिए भक्ति जुगल टू ज्ञान, देखो एकत्व आ रहा है, एकत्व आ रहा है, इसलिए भक्ति जुगल टू ज्ञान। और सातवें अध्याय में भगवान कहने वाले हैं कि ये ज्ञानी भक्त जो है ना, वे मेरी आत्मा ही है, ज्ञानी भी मेरा ही भक्त है। चार किस्म के भक्त की बात भगवान कहेंगे वहां पर, वो हम देखेंगे उस टाइम में। उन चार के अंदर में एक भक्त ज्ञानी भी है, बाकी तीन बता देते हैं। नारद भक्ति सूत्र में भी आया, आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और चौथा ज्ञानी। इन चार में भगवान कहते हैं ज्ञानी तो मेरा अपनी आत्मा है, मेरी अपनी आत्मा है, वो मेरे साथ एक है। अच्छा, सर्वथा वर्तमान अपि सहयोगी में ही वर्तते। अच्छा, ये जितना प्रेम है ना, जितना गाढ़ा होगा ना उतना तादात्म्य बढ़ता है। जितना गाढ़ा होगा, नारद भक्ति सूत्र में हमने देखा कि वो और कोई चिंतन नहीं करता है, ना कोई सात्विक भक्ति, ना राजसिक भक्ति, ना तामसिक भक्ति, कुछ नहीं करता है, केवल भगवान से प्रेम करता, बस उसी में स्थित है, उसी में स्थित है। सर्वथा वर्तमान अपि सहयोगी में ही वर्तते। ऐसा व्यक्ति जो है वो कॉस्मोस से युक्त है, एक हो गया, सारे जगह उसको केवल ब्रह्म ही ब्रह्म नजर आता है, और उसे जो भी बर्तन कहता है भगवान कहते हो मेरे साथ बर्तन है। वो जो भी बर्तन कर रहा है वो भगवान के साथ बर्तन हो रहा है, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है भगवान बोलते हैं मेरे साथ हो रहा है। अच्छा, तो ऐसा बर्तन जो है उसको बांधता नहीं है। देखो, ऐसा बर्तन जो है उस ज्ञानी को बांधता नहीं है। अच्छा, फिर ज्ञानी फिर कैसे या किस रूप से बर्तन करता है? ज्ञानी ज्ञान प्राप्त के बाद भी आपका शरीर रहेगा, और शरीर बिना एक क्षण भी बिना काम के नहीं रह सकता, काम अवश्य करेगा, कर्म वो जरूर करेगा। तो क्या क्या कर्म कर सकता है ज्ञानी? वो एक तो ये हो सकता है लोक संग्रह, लोगों को सही रास्ता दिखाना, भाई आप इस रास्ते पर चलो, हम वहाँ मंजिल तक पहुँच गए हैं, आप भी को मैं दिखा देता हूँ, आप भी मंजिल तक पहुँचो, यही जीवन का लक्ष्य है। एक तो ये काम है ज्ञानी का। दूसरा काम क्या है? तस्य कार्य न विद्यते। ज्ञानी, मेरी मर्जी है, मैं काम करूं नहीं करूं, मेरी इच्छा है कल से क्लास लूं या नहीं लूं, यू कांट फोर्स मी। कोई नहीं फोर्स कर सकता, मेरी मर्जी। अच्छा, मैं उससे भी ज्यादा खराब काम करूंगा, डूइंग नॉनसेंस थिंग्स। ज्ञानी डूइंग नॉनसेंस, फिर भी इन सबसे वो बनता नहीं है। मजे की बात है, बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता है? साइंस बताओ, आप लोग बताओ। क्योंकि वो अकर्ता बन गया है, क्योंकि वो अकर्ता बन गया है। इसलिए भगवान ने आगे भी कहा है कि हत्वा पिसा ईमान लोका ना हंती ना निबद्धते। अगर वो सारी दुनिया को भी मार डाले, ऐसा नहीं होता कि ज्ञानी हत्या करता, कभी नहीं करेगा वो, ज्ञानी कभी भी हत्या नहीं करेगा। इतना जघन्य काम भी कर दे हो तब भी वो बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता है? बोला करता है। तो कर्तुम अकर्तुम अथवा अन्यथा कर्तुम, जो भी वह करे ज्ञान के कारण वो बनता नहीं है। क्या ज्ञान है उसको? क्या ज्ञान मिला? कि मैं हूं ब्रह्म, मैं आत्मा हूं, और ब्रह्म में आत्मा क्या है? अकर्ता है। कर्ता कौन हुआ? गुना गुणेशु वर्तन्ते, मगर अहंकार विमूढ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। काम किस में हो रहा है? कर्ता कहाँ पर, कौन कर रहा है? गुना गुणों से वर्तन्ते, प्रकृति प्रकृति में अपना वर्तन कर रही है, और हम बेवकूफ कहते हैं मैं करता हूं, मैंने किया है। मैंने किया है। अच्छा, तो यहां पर ज्ञान की शक्ति बताई गई है। ज्ञानी हत्या नहीं करता है। ज्ञान हो जाने के बाद में पाप पुण्य उस ज्ञानी को छूता नहीं है। क्यों नहीं छूता है? क्योंकि वो अकर्ता है। पाप पुण्य किसको छूता है? जो अज्ञानी है, जो अपने आप को कर्ता मानता है। जो करता है वो भोक्ता भी बनेगा। अगर आप अपने आप को कर्ता माने तो आपको भोक्ता भी बनना पड़ेगा। सहयोगी मई वर्तते, वह जीवन मुक्त है। ऐसा योगी फिर संसार में गिरता नहीं। ये मजे की बात है, वन वे ट्रैफिक है, इट्स वन वे ट्रैफिक। अज्ञानी ज्ञानी बन सकता है, मगर ज्ञानी फिर अज्ञानी नहीं बन सकता। ऐसा कभी नहीं होगा। एक बार ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद में आप बोलोगे कि नहीं नहीं आई वॉन्ट टू बी इग्नोरेंट नाउ, मैं फिर से अज्ञानी होना चाहता हूँ, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अच्छा, उसको विष्णु का परम पद मिल गया और वो सदा आत्मा में ही स्थित रहता है। अब भगवान अगले श्लोक में एक परम योगी के बारे में बताएंगे। ये ज्ञानी तो योगी है, इसके लिए भगवान ने केवल योगी वर्ड यूज किया, मगर अगले श्लोक में एक वर्ड आने वाला है परम योगी। तो ये योगी कौन है और परम योगी कौन है, परम योगी कौन है, चलो इसको देखते हैं। तो अभी 29वें और 30वें और 31वें श्लोक में हमने ये देखा कि एक तो है बिना जीव ब्रह्म एक के ज्ञान से आपकी अगर समाधि अगर लग भी गई तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। सफलता नहीं मिलेगी मतलब आपका दृष्टिकोण नहीं बदलेगा, आपका दृष्टिकोण नहीं बदलेगा। बिना गीता पढ़े हुए भी अगर आप ध्यान में सफल हो जाएं, आप फिर भी ध्यान के पूर्व जीव थे, ध्यान के बाद भी फिर जीव रहोगे। जैसे नींद में जाने के पहले, सुषुप्ति में जाने के पहले हम जो थे, नींद खुलने के बाद में जो हमारी अवस्था होती है एक ही रहते हैं। ऐसा कभी हुआ है कोई डॉक्टर सोया है दूसरे दिन जाके इंजीनियर बन गया, कभी नहीं होता ऐसा। उसी तरह से अगर कोई जीव बिना जीव ब्रह्म ऐक्य के ज्ञान के बिना अगर समाधि में बैठे और उसमें सफल भी हो जाए तो जीव रूप से जाएगा, जीव रूप से वापस आ जाएगा, कोई लाभ ही नहीं होगा। तो 29वें श्लोक में भगवान ने कहा कि सारी उपाधि आत्मा के ऊपर अधिष्ठान है, अध्यस्त है। जितनी उपाधि है, जितनी भी कंडीशनिंग है, जिसको हम शरीर मन बुद्धि कहते हैं, इसको हम उपाधि कहते हैं, ये किसके ऊपर अध्यस्त है, बोले आत्मा के ऊपर अध्यस्त है। अच्छा, और 30वें में श्लोक में भगवान ने कहा मुझ ईश्वर को जगत का अधिष्ठान जानना और सारा जगत मेरे पर अध्यस्त है, ये है, ये है। और ऐसे लोग के लिए जिसने ये जान लिया उसके लिए भगवान कभी अदृश्य नहीं होते, अदृश्य नहीं होते मतलब सब जगह भगवान नजर आ रहा है उसको, चाहे चेयर देखे, चाहे टेबल देखे, चाहे दीवार देखे, चाहे सूर्य देखे, चाहे वृक्ष देखे, अस्थि भांति प्रिय उसको नजर आ रहा है। पहले अनुभव के लिए आंख बंद करनी पड़ती है, एक बार आंख बंद करके उसका अनुभव होने जाने के बाद में फिर आंख बंद करने की दरकार नहीं होती है, उसके बाद वो खुली आंखों से आपको सब जगह नजर आएगा, क्योंकि अस्थि भांति प्रिय सब जगह है, सब जगह जहां जिस चीज को देखेगा अरे अस्थि भांति प्रिय है। और हम क्या देखते हैं, हम नाम रूप देखते रह जाते हैं, नाम रूप देखते रह जाते हैं। अच्छा, 31वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि ऐसा योग भले ही वह जो भी काम करे, अन्यथा करे या गलत काम करे, उसको कोई पाप नहीं लगता, कोई पुण्य नहीं लगता, कुछ नहीं, पाप पुण्य नहीं लगता। याद रखना होगा क्यों पाप पुण्य नहीं लगता, क्योंकि वो अब अकर्ता हो गया है, उसको ज्ञान हो गया है कि हम आत्मा या हम ब्रह्मन हैं, और ब्रह्मन कर्ता नहीं होता, जो कर्ता होता है उसी को भोक्ता भोग करना पड़ता है। तो एक बार ज्ञान होने के बाद में अब उसके पास में पाप पुण्य और कुछ नहीं है। अच्छा, 32वां श्लोक,
आत्मोपमेन सर्वत्र,
आत्मोपमेन सर्वत्र,
समं पश्यति अर्जुन,
समं पश्यति अर्जुन,
सुखं वा यदि वा दुःखं,
सुखं वा यदि वा दुःखं,
स योगी परमो मतः,
स योगी परमो मतः,
आत्मोपमेन सर्वत्र, समं पश्यति अर्जुन, सुखं वा यदि वा दुःखं, स योगी परमो मतः।
आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति यह अर्जुन। आत्मोपमेन माने उपमा, स्वसादृश्य न सिमिलरिटी, भगवान एक सिमिलरिटी बता रहे हैं। सर्वत्र सर्वभूतेषु, सर्वत्र का मतलब सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु सब प्राणियों में, सब प्राणियों में अपनी सृदिता से जो योगी सर्वत्र सर्वभूतों में तुल्य देखता है, मेरे में जो चीज है वो सब प्राणी में एक ही चीज है। मेरे से वो प्राणी जो है आत्मा की दृष्टि से कोई भेद नहीं है। शरीर की दृष्टि से भेद हो सकता है मगर आत्मा की दृष्टि से कोई भेद नहीं है। यानी मैं जैसा प्राणी हूं वैसा ही दूसरा प्राणी है। सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी परमामत। जैसे मैं सुख चाहता हूं सब प्राणी सुख चाहते हैं। ये बड़े मजे की बात है। जैसा मैं सुख चाहता हूं वैसा ही सब प्राणी सुख चाहते हैं। अच्छा, तो परम योगी सबको सुख देता है बिना राग द्वेष के। परम योगी जो है वो बिना राग द्वेष के। हमारे पास में राग द्वेष है, हम अपने राग द्वेष के हिसाब से काम करते हैं, राग द्वेष के हिसाब से काम करते हैं। मगर परम योगी बिना राग द्वेष, बिना राग द्वेष, बिना लाइक डिसलाइक, बिना लाइक डिसलाइक, बिना वासना। परम योगी की तो वासना खत्म हो गई ना, उसका तो अब कोई पाप ही नहीं रहा, कोई लाइक डिसलाइक नहीं रही उसकी। तो वो सबको जो है सुख देता है। कैसे देता है? बिना राग द्वेष के। अच्छा, जैसे मुझे दुख होता है वैसे सभी प्राणियों को दुख होता है, ऐसा जानकर परम योगी किसी प्राणी को दुख नहीं देता है। देखो, क्योंकि मेरे को सुख चाहिए, अब वो सोचता है कि ये जितने भी प्राणी दुनिया में है सबको सुख चाहिए, और उसके हाथ में जितना सुख देने लायक है उतना वो सुख देता है बिना राग द्वेष के, बिना राग द्वेष के। और जैसे मुझे दुख होता है वैसे ही सब प्राणियों को भी दुख होता है, ऐसा जानकर योगी किसी भी प्राणी को दुख नहीं देता। अच्छा, लगता है ये बहुत सहज है, क्या है, हमको सुख चाहिए उनको भी सुख चाहिए, सहज बहुत है, मेरा इतना सहज नहीं है। देखो, हम जानते हैं ना, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है। अब बताओ, इसको प्रैक्टिस करना सहज है क्या? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ऑनेस्टी जहाँ आ जाती है, जहाँ थोड़ा सा हमको अपना काम में कर्म की अपनी अपने लिए जो कामना होती है उसके अंदर हम शॉर्टकट करने को तैयार हैं, बराबर तैयार रहते हैं। सो जो अपने लिए करो वही दूसरों के लिए करो। देखो, ये यहां से हमको सीखना है, जो अपने लिए करो वही दूसरों के लिए करो, वह परम योगी है। भगवान कहते हैं वही परम योगी है, जो अपने लिए करो वही दूसरों के लिए करो। इसके ऊपर मनन कीजिएगा, मनन कीजिएगा, जो अपने लिए करो वो दूसरों के लिए करो। इस श्लोक के साथ में ध्यान योग यहां समाप्त होता है, ध्यान योग यहां समाप्त हो जाता है। अब अर्जुन का प्रश्न है एक, वो देखेंगे। मगर अब ये जो है, ये परम योगी कौन होता है, परम योगी कौन होता है? योग वासिष्ठ के अंदर मन की सात भूमिकाएं बताई गई हैं। आपने पढ़ा नहीं होगा, जरा सा हम इशारा दे के चले जाते हैं, कभी अगर मौका मिलेगा तो योग वासिष्ठ पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में। तो योग वासिष्ठ के अंदर मन की सात भूमिकाएं हैं। एक होता है शुभेच्छा, शुभेच्छा, श्रवण की इच्छा, मेरे को मुक्ति चाहिए। जिस टाइम मन के अंदर ये अवधारणा आ जाए कि मुझे आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, इस जीवन में चाहिए, ये जैसे ही आ गया तो उसको हम लोग कहते हैं ये शुभ इच्छा है। शुभ इच्छा को जोड़ के बताते हैं शुभेच्छा, शुभेच्छा आ गई। उसके बाद में विचारना, ये दूसरा स्टेट है मन का, विचारना। इसमें क्या होता है, उसमें हम मनन करते हैं, श्रवण के बाद में हम मनन करते हैं, विचार करते हैं उसके ऊपर में, जो भी हम सुना उसके ऊपर हम विचार करते हैं कि शास्त्र में जो कहा है वो ठीक है, मगर हमारी बुद्धि कई बार नहीं समझ पाती है, तो उसके ऊपर हम विचार करने से आस्ते आस्ते समझ जाते हैं कि जो हमको कहा गया है शास्त्रों में या गुरु ने कहा वो ठीक है, ठीक है। कई बार संशय होता है क्योंकि हमारी बुद्धि अभी पूरी विकसित नहीं हुई है, उतनी सूक्ष्म नहीं हुई है समझने के लिए, मगर सुनते रहते सुनते रहते सुनते रहते आपकी बुद्धि ऐसी हो जाएगी कि आपको पकड़ में आएगा। पकड़ में क्या आएगा कि अंकल जी क्या अगला सेंटेंस कहने वाले हैं, जिन्होंने 6 साल तक सुना है वो बता पाएंगे। सुनते 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 आपको याद आ, इसके बाद में ये बोलने वाला है, जैसे ही आत्मा कहा अनात्मा बोलेंगे ये, देखो ऐसा हो जाएगा, आपकी बुद्धि बन जाएगी। तनुमांसा, तनुमांसा मीन्स निधि ध्यासन, सविकल्प समाधि, सविकल्प समाधि मतलब आप एक जो है किसी की सजातीय वृत्ति का प्रवाह करते हैं, सजातीय एक ही वृत्ति पकड़ के उसी का प्रवाह करते हैं, बार बार उसी को बोलते जाते हैं। सत्वापत्ति, सत्वापत्ति मतलब निर्विकल्प समाधि हो गई, सत्वापत्ति निर्विकल्प समाधि। तो निर्विकल्प समाधि को योगी कहते हैं। देखो यहां पर ये चौथी भूमिका में जाके ये योगी बनता है, परम योगी इसके बाद की भूमिका आएंगी। तो चार तक से, चार पांच छह सात, ये चार किस्म के योगी जो हैं विदेह मुक्त होते हैं, इनका और पुनर्जन्म नहीं होता है, इनको विदेह मुक्ति मिलती है। मगर पांचवा छठा और सातवां के जो योगी हैं उनको जीवन मुक्त कहते हैं, इनको जीवन मुक्त कहते हैं। पांचवा कौन है भाई? असंशक्ति, असंशक्ति मतलब ब्रह्म विद्वर, उसको ब्रह्म का ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया, वो समाधि में सहज रूप से चला जाता है, सहज रूप से चला जाता है, अपने आप उठ भी आता है, अपने आप उठ कर आ जाता है, समझ सहज समाधि में जाता है एफर्टलेसली, ब्रह्मविद वर कहते हैं उसको। उसके बाद में छठा है पदार्थ भावना, ब्रह्मविद वरियान, ब्रह्मविद वरियान। ऐसा योगी क्या होता है? वो समाधि से अपने आप नहीं उठ पाता है, उसको दूसरों का सहारा लेना पड़ता है, दूसरे उसको उठाएंगे तब उठेगा। पहला वाला अपने आप उठ जाता था, निकल आता था समाधि से, दूसरा वाला उठाना पड़ता है दूसरे को। ठाकुर रामकृष्ण की समाधि ऐसी हुआ करती थी, फिर उनको हिलाते थे, ठाकुर ठाकुर रसगुल्ला खाओगे, ऐसे करके हिला के उनको बोलना पड़ता है। ठाकुर को जो है रामकृष्ण को रसगुल्ला बहुत पसंद था, तो जैसे ही रसगुल्ला का नाम उतर आए, उनको हिला झगड़ा तब वो आए, नहीं तो नहीं आते थे, पड़े वही पड़ोगे ऐसे ही। और सातवां है तुर्यगा, तुर्यगा में ब्रह्मविद वरिष्ठ, ब्रह्मविद वरिष्ठ। अब ये दूसरों की सहायता लेने से भी वो समाधि से उठता नहीं है, समाधि से उठता नहीं है। इसका उदाहरण क्या है? वाल्मीकि, वाल्मीकि उनके शरीर पर एंट हिल हो गया था, सब उठते ही नहीं थे, समाधि से नहीं उठते थे। अच्छा, तो चौथी अवस्था जो आपको हम बताई सत्वापत्ति की, वो है सिंपल योगी, अपरम योगी। पांचवी छठी और सातवीं जो हमने आपको बताई मन की भूमिका, असंशक्ति, पदार्थ भावना और तुर्यगा, इसको हम परम योगी कहेंगे। तो भगवान जो शब्द परम योग कहा वहां पर, परम योगी उसको कहा, इस योगी की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब जो है शंकराचार्य जी कहते हैं कि इस उपयुक्त पूर्ण ज्ञान रूप योग की कठिनता से संपादन किया, ये योग जो है बड़ा कठिन है, संपादन किया जाने योग्य समझकर उसकी प्राप्ति के निश्चित उपाय की सुनने की इच्छा वाले अर्जुन बोले। अर्जुन को लगा कि ये जो है योग बड़ा कठिन है, कठिन है, इसको अच्छी तरह से समझ लें ताकि जब पकड़ पाए इसको अच्छी तरह से भगवान से समझ लेना चाहिए, ऐसा सोचकर वो प्रश्न कर रहा है।
अर्जुन युवाच, अर्जुन युवाच, योयम् योगस्त्वया प्रोक्तः,
योयम् योगस्त्वया प्रोक्तः,
साम्येन मधुसूदन,
साम्येन मधुसूदन,
एतस्याहं न पश्यामि,
एतस्याहं न पश्यामि,
चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्,
चञ्चलत्वास्थितिं स्थिराम्।
अर्जुनयुवाच, योयम् योगस्त्वया प्रोक्तः, साम्येन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि, चंचलत्वात् स्थितिम् स्थिराम्।
अर्जुन कहता है कि यह अयम योग त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन, हे मधु राक्षस को मारने वाले भगवान कृष्ण, आपने जो समत्व रूप योग कहा, समत्व रूप ये जो आपने योग कहा, समत्वेन सहित साम्येन, साम्येन मतलब समत्वेन रही जो योग कहा, एतस्य अहम् न पश्यामि चंचल आत्मस्थितिम स्थिराम, यह संभव नहीं है, संभव नहीं है। भगवान ने अपना माथा ठोक लिया होगा कि 6 अध्याय पढ़ाने के बाद में इतना उसको हमने समझाया कि कैसे योग में जाना है, और ये अर्जुन अभी कह रहा है कि आपने जो कुछ अभी तक समझाया है, एतस्य अहम् न पश्यामि चंचल आत्मस्थितिम स्थिराम, यह संभव नहीं है। विनियतम चित्तम, जब मन महात्मा में एक साथ एकाकार हो गया, मन का अलग अस्तित्व नहीं रहा, एकाकार हो गया, मन में कोई वृत्ति नहीं है, कामना रहित, संकल्प रहित, कितना सर्वान अशेष, कोई वृत्ति नहीं है। अच्छा, आपने ऐसा कहा था, और उसका एक आपने उदाहरण भी दिया था, यथा दीप निवातस्थ, जैसे दीपक एक ऐसे स्थान में पड़ा हुआ है जहां पर कोई हवा नहीं है, अब उसकी लौ जो है स्थिर, लौ स्थिर है, तो ऐसा भी आपने कहा था। तो ऐसा जो विशुद्ध सत्य होता है वो कब होता है, बोले जब रजस तमस विहीन मन होता है। देखो, जब मन में कोई रजस नहीं है, विक्षेप नहीं है, तमस नहीं है, लय नहीं है, और विशुद्ध सत्व होता है, तब ऐसी स्थिति आती है। विशुद्ध सत्व इसका मतलब शुद्ध सत्व जब होता है तो सविकल्प समाधि होती है, जब विशुद्ध सत्व होता है तब निर्विकल्प समाधि होती है। देखो, शुद्ध सत्व विशुद्ध सत्व दोनों में फर्क है। शुद्ध सत्व चाहिए, प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड चाहिए, किसके लिए, सविकल्प समाधि के लिए। विशुद्ध सत्व निर्विकल्प समाधि के लिए चाहिए। और फिर आपने ये भी कहा था, सनई सनई उपरमेत, धीरे 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 उसको संसार से उपरम करो। इतनी बातें जो आपने समझाई, स्थितिम श्रीराम, लगातार मन का स्थिर होना मेरे लिए संभव नहीं है, मेरे लिए संभव नहीं है। आपके लिए संभव होगा, या आप लोग कह सकते हैं गुरुदेव के लिए संभव होगा, तपोवन जी महाराज के लिए संभव होगा, विवेकानंद के लिए संभव होगा, ऐसे लोगों के लिए संभव हो सकता है। मगर मेरा मन कैसा है, चंचल है, स्थिर नहीं है। देखो, ये सब आपका प्रश्न है कि नहीं, आपका मन स्थिर होता है समाधि में, नहीं होता है। अर्जुन हमारे लिए ये प्रश्न कर रहा है। अच्छा, आपने जो भी कुछ कहा मुझे समझ में आया, आपकी स्कीम, आपने जो तरीका बताया, पद्धति जो बताई, उसमें कोई दोष नहीं है, मेरे समझ में सब आ गया, सब समझ में आया, मगर मेरा मन चंचल है, मेरा मन चंचल है, उसको स्थिर करना बहुत मुश्किल है, उसको आत्मा में एकाकार करना असंभव है। और महात्मा लोग कहते हैं, बोले ऐसा असंभव है कि जैसे कुत्ते की पूंछ को सीधा करना। कभी आपने प्रयास किया कुत्ते की पूंछ को सीधा करने का? महात्मा लोग कहते हैं उसको एक पाइप में, स्टील के पाइप में भी डाल के रख दो, 100 साल के बाद भी निकालोगे तो फिर पूंछ टेढ़ी हो जाएगी, असंभव है सीधा करना उसको। अच्छा, अब अर्जुन 34वें श्लोक में इसका कारण बताते हैं क्यों ये असंभव है। 34वां श्लोक देखें।
चंचलम हि मनः कृष्ण,
चंचलम हि मनः कृष्ण,
प्रमाथि बलवद्दृढम्,
प्रमाथि बलवद्दृढम्,
तस्याहं निग्रहं मन्ये,
तस्याहं निग्रहं मन्ये,
वायोरिव सुदुष्करम्,
वायोरिव सुदुष्करम्,
चञ्चलं हि मनः कृष्ण, प्रमाथि बलवद्दृढम्, तस्याहं निग्रहं मन्ये, वायोरिव सुदुष्करम्।
चंचलम ही मन कृष्ण, हे दुख पाप को नाश करने वाले भगवान कृष्ण, हे कृष्ण। यह मन कैसा है? चंचल है, उसका स्वभाव चपल है। अच्छा, और ये इंद्रियों और शरीर से नियंत्रण में नहीं आने वाला है। हमारे पास में क्या क्या है? शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है। शरीर से सूक्ष्म इंद्रियां हैं और इंद्रियों से सूक्ष्म मन है। तो अर्जुन कहता है कि हमारे शरीर से या इंद्रियों से हम मन को जो है नियमन नहीं कर पाएंगे, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि यह प्रमाथी है, प्रमथन स्वभाव वाला है, टर्बुलेंट है। जैसे हाथी किसी एक झोंपड़ी में घुस जाए तो कैसा टर्बुलेंट हो जाता है, तहस नहस कर देता है। बोला ऐसा ये मन है, ऐसा ये प्रमाथी है। और ये जो है शरीर और मन से नियंत्रण हम नहीं कर पाएंगे। बलवद, बलवद यह मन किसी भी वश में किया जाना अशक्य है, अशक्य है, बलवद है, दृढ़ है, साथ में यह दृढ़ भी है, दृढ़ भी है। शंकराचार्य जी कहते हैं जैसे अर्थात गोह नामक जलचर जीव की भांति अछेद्य है। गोह, गो मतलब जैसे सार्क वगैरह जो है ना, उसको आप जो है अगर किसी ऐसे से कांटा जैसे मछली पकड़ते उस कांटे से उसको पकड़ना चाहोगे, अछेद्य, कुछ नहीं होता उसको, वो तो आपको सहित टान के लेके चला जाएगा, अछेद्य है। अच्छा देखो, एक बड़े हाथी को भी अगर पेड़ से बांध दो ना, पेड़ से बांध दो, तो जितना भी उसका बल होगा ना, कुछ देर के बाद निस्तेज हो जाता है और नहीं फिर छटपट करता है, शांत हो जाता है। मगर मन पर यह लागू नहीं होता है। हाथी को आप कंट्रोल कर लोगे, उसको अंकुश से कंट्रोल कर लो कि आप उसको बड़े ब्रिज से बांध लो तो कंट्रोल हो जाता है। तो कभी कहते हैं कुछ चीज समय के साथ कमजोर हो जाती है, लोग कहते हैं कि अरे छोड़ दो, क्यों चेष्टा करते हो, ये अपने आप कमजोर हो जाएगा। मगर ये तो बढ़ता रहता है, जितनी वासनाएं पूर्ण करेंगे उतना ये बढ़ता जाएगा, बलवान होता है, डे बाई डे जो है ये पुष्ट होता रहता है, कमता नहीं है, समय के से कमती हो जाएगा ऐसा नहीं है। ये हमारा मन जो है ना, ये जो है मिलियन ईयर से चला आ रहा है। अभी जो आपका मन है ये कोई नया मन नहीं है, ये सूक्ष्म शरीर का अंश है, वो पिछले शरीर से आ रहा है और अगले शरीर में जाएगा। अगर इस जीवन में आपने ज्ञान नहीं प्राप्त किया तो ये मन जो है दूसरे शरीर में जाने वाला है। तस अहम निग्रह मन्य वायो इव दुष्करम, तो मन का नियंत्रण अथवा रोकना मैं मानता हूं कि दुष्कर है, जैसे वायु को रोकना, वायु को रोकना, टॉर्नेडो आ रहा है या स्टॉर्म आ रहा है, आप रोक सकते हो उसको? कुछ नहीं कर सकते उसको, कुछ नहीं कर सकते। तो बोले अपने प्रयास से हम उसको रोक नहीं पाएंगे। भगवान आपकी टीचिंग अच्छी है मगर मेरे पर लागू नहीं होती है, अर्जुन ने मुंह के ऊपर भगवान के ऊपर कह दिया। आपकी टीचिंग बहुत अच्छी है, बहुत साइंटिफिक है, आपने जो कहा सब मेरे को समझ में आया है, कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या क्या करना है, क्या सविकल्प समाधि है, क्या निर्विकल्प समाधि है, कैसे होगा, फल क्या मिलेगा, आत्यंतिक सुख मिलेगा, सब समझ में आया है। मगर मन को आत्मा में स्थित करना मेरे लिए ये संभव नहीं है। तो भगवान जो है गुस्सा नहीं होते हैं, देखो गुस्सा नहीं होते हैं, मुस्करा कर उसका उत्तर देंगे। तो क्या उत्तर देंगे, अब अगली कक्षा के लिए आपको वेट करना होगा। अगली कक्षा में भगवान उसका उत्तर देंगे, कैसे आप मन को कंट्रोल करोगे।
पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।